नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
गृहमंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की खंडपीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upscionline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल हैं। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संस्थाओं ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि इन घटनाओं को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इन संगठनों ने कहा कि कई प्रभावित परिवारों के लिए ईद का त्यौहार शोक, अनिश्चितता और अपनों से बिछड़ने के दर्द में बदल गया है। जापानी संसद ने आज विदेशी संकट से निपटने के लिए सूचना जुटाने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने हेतु राष्ट्रीय खुफिया परिषद की स्थापना के लिए कानून को मंजूरी दे दी। परिषद की स्थापना जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची के शासन के प्रमुख उद्देश्यों में एक है। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से मुकाबला खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।